ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பிரம்ம விஜயான கேந்திர ஸ்ரீ கைலாசாசிரம கி பஞ்சம பீட்டாதீஸ்வர பிரம்மலீன சாயம் பிரேம்புரி மகாராஜிக்கு சம்ஸ்மரண செய் சம்ஸ்தாபித அத்தியாத்ம வித்யா பவன மும்பை மே பிராத சுவாத்தியாய பிரவச்சன காரியக்ரமே க்ரம மே அபி சல் ரஹா ஹை உபநிஷத் ஜ்ஞான யஜ்ஞம். ஈஷாவாஸ்ய கேன உபநிஷத் கடோ உபநிஷத் தீன் கே பாத் அதர்வவேத யஹ பிரஸ்ன உபநிஷத். தீன் பிரஸ்ன கா த்ருத்திய பிரஸ்ன தக் ஹோ கயா உத்தர வியாக்யான. அபி சதுர்த பிரஸ்ன ஹை. तीनों प्रश्न के द्वारा यह निरूपण किया गया अपर विद्या जो उपासना है, उपासना से जितने भी फल प्राप्त हो वह अनित्य है, हिरण्यगर्भ पद प्राप्ति है, वो स्थूल अभिषेक साध्य साधन रूप है, जितने कर्म करे उपासना करे यह जो फल प्राप्त होता है उत्तरायण मार्ग से जाकर के ब्रह्मलोक तक प्राप्त है, यही फल है, सबसे अधिक उपासना का फल है। इसके आगे जो ब्रह्मलोक में भी विरक्त हो, ब्रह्मलोक प्राप्ति की इच्छा हो तो ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। वैराग्य इतने है ब्रह्मलोक प्राप्ति की इच्छा नहीं हो तब ज्ञान होगा, जो कि साध्य साधन से विलक्षण है। ब्रह्मलोक साध्य है, उपासना साधन है, साध्य साधन विलक्षण जो शांत शिव अक्षर ब्रह्म है पर विद्यागम्य। आगे मुंडक उपनिषद में दो विद्या करेंगे, परा अपरा। अपरा विद्या सारे वेद उपासना कर्म सब कुछ ही परा विद्या है, अथवा पराया तद अक्षरम अधिगम्यते, ब्रह्म ज्ञान को परा विद्या कहते हैं। अभी परा विद्या का आरंभ करेंगे। परा विद्या का विषय ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म कथन करने के लिए तीन प्रश्न यहां से प्रारंभ होता है, यहां से ब्रह्म उपदेश करने के लिए भूमिका प्रारंभ होता है। अक्षर से ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न होते हैं, विस्फुलिंग अग्नि की चिंगारी के जैसे इसे मुंडक उपनिषद में है, तो जैसे विभक्त होकर के क्या क्या उत्पन्न होते हैं इसके लिए कथन करने के लिए आगे प्रारंभ किया जाता है। अथ हैनम सौर्यायणी गार्ग्यः पप्रच्छ भगवन एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिन् जाग्रति कतर एष देव स्वप्नान् पश्यति कस्येतत् सुखं भवति कस्मिन् सर्वेषां प्रतिष्ठिता भवन्ति इति पप्रच। इस प्रकार पूछा। सूर्य के पुत्र सौर्याणि गर्ग गोत्रापत्ये गार्ग्य ने पूछा, हे भगवन पिपलाद महर्षि से संबोधन करके, एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति, यह जो पुरुष है मनुष्य है, हाथ पर सिर आदि चक्षुरादि इंद्रिय युक्त शरीर है, इंद्रिय करण है, इंद्रिय करण है, शरीर है कार्य, एक कार्य करण शरीर इंद्रिय युक्त यह जो पुरुष है, कानि स्वपन्ति, इसमें सोते हैं कौन, सोते हैं मतलब निद्रा काल में व्यापार से कौन उपरत होते हैं, कौन व्यापार करते हैं और कौन उपरत होते हैं, अपने व्यापार से कौन उपरत हो जाते हैं, और कान अस्मिन जागृति, और इनमें कौन जागते रहते हैं, जागते मतलब अपने व्यापार से ऊपर तो नहीं होते हैं, जागरण है तो निद्रा अवस्था नहीं, व्यापार से ऊपर तो नहीं होते हैं। पहला है कौन सोते हैं अर्थात व्यापार से ऊपर तो हो जाते हैं, और कौन कौन है जो ऊपर तो नहीं होते अपने व्यापार करते रहते हैं, कौन जागते हैं। कतर ऐसा देव स्वप्नान पश्यति, इसमें कौन देव कार्य शरीर करण इंद्रिय दो विवाह करके दोनों में से कौन देव है स्वप्न दिखता है, स्वप्नान पश्यति, स्वप्न होता है निद्रा अवस्था में, जागृत काल में जो दर्शन होता है अनुभव होता है उसे वासना होती, तज्जन्य वासना से निद्रा काल में ऐसे प्रतीति होती है, स्वप्न जागृत वत लगता है, वह स्वप्न दर्शन का देव कह कतर ऐसा देव शरीर इंद्रिय में से कौन स्वप्न देखता है, कस्य तत् सुखम भवति, और उसके बाद सुषुप्ति अवस्था में सुख किसको होता है, कस्मिन् सर्वेषां प्रतिष्ठिता भवन्ति, और सब किस में सुषुप्ति अवस्था में सारे सर्व इंद्रिय किस में लीन हो जाते हैं, सब प्रतिष्ठित होते हैं, किस में रहते हैं, ये प्रश्न हुआ। आगे उत्तर है, पिपलाद महर्षि कहते हैं, तस्मै सहोवाच यथा गार्ग्य मरीचवर्कस्यास्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिन् तेजमण्डल एकी भवन्ति, ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्ति एवं हवै तत्सर्वं परे देवे मनसि एकी भवति, तेन तर्हि एष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विसृजते न्यायते स्वपीति त्याचक्षते। प्रथम प्रश्न का उत्तर इसमें है। प्रथम प्रश्न दिया कहा था एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति, ये प्रथम प्रश्न का उत्तर है। पहले दृष्टांत देते, हे गार्ग्य यथा मरीचे अर्कस्य अस्तम गच्छतः, अर्कस्य सूर्य के मरीचि किरण अस्त जाते समय, अस्तम गच्छतः जब सूर्य अस्त हो जाते हैं, सर्वा एतस्मिन् तेज मंडल एकी भवन्ति, सारे सूर्य की रश्मि सूर्य अस्त होते समय किरण फैल जाती है, दिन में सूर्य अस्त होते समय ये रसो रश्मि फिर सूर्य मंडल में एक हो जाते हैं, अंधकार पूरा हो जाता है रात होने पर, जितने प्रकाश दिन में फैल जाते हैं सारा ब्रह्मांड में, सूर्य अस्त होते समय ये रश्मि तेज मंडल में एक हो जाते हैं, अन्य कहीं रश्मि नहीं रहती है। ता पुनः पुनरुदयतः प्रचलन्ति, फिर जब उदय सूर्य होते हैं तो बाहर आते हैं रश्मि, जब उदय होती तो उदय होता है सूर्य का, रश्मि बाहर आते हैं सबको प्रकाश करते हैं, सूर्य अस्त होते समय रश्मि जाकर सूर्य मंडल में एक हो जाती है। ये जैसे दृष्टांत हुआ एवं इसी प्रकार हवे तत्सर्वम, ये सारे सब इंद्रिय परे देवे मनस एक ही भवन्ति, सो जाता है मन में सब, पर देव मन को कहा, इंद्रिय को भी देव कहते, द्योतनाथ प्रकाश रूप है विषय ग्रहण ज्ञान होने से इंद्रिय को भी देव कहते, किंतु पर देव मन है, क्योंकि मन पूर्वक ही इंद्रियों का व्यापार होता है, इसे देव पर देव हो गया मन, तो परे देवे प्रकृष्ट है, विषय ग्रहण करने के लिए मन होता है, उनमें मन के अधीन है इंद्रियों का व्यापार, तो मन हो गया पर देव, मन में एक हो जाते हैं सब इंद्रियों का व्यापार समाप्त होकर मन में एक ही भवंती, तेन तरह से पुरुषो न श्रृणती, सारे इंद्रियों का व्यापार समाप्त हो जाने से कहानी स्वपति, तो सब कुछ मन में एक हो गए, अर्थात सब व्यापार से उपरत हो गए, सब व्यापार से उपरत हो जाने से चक्षुरादि इंद्रिय का कार्य नहीं होता है, श्रवण इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय न श्रृणती नहीं देखता है, न पश्यति जिघ्रती न गंध ग्रहण करता है न रस ग्रहण करता है, तो इंद्र से स्पर्श भी नहीं करता है, वाघ इंद्र से बोलता नहीं, ना भी बदत्ते ना भी बदत्ते बोलता नहीं, न आदत्ते हस्त ग्रहण भी कार्य नहीं करता हस्त इंद्रिय, न आनंदेते उपस्थ इंद्रिय जनन इंद्रिय, न विसृजते वो पायु इंद्रिय विसर्ग भी नहीं करता है, न यायते चलन नहीं करता है, स्वपीति कहते सो जाते समय कुछ व्यापार नहीं करता है, स्वपीति त्याचक्षते सब कहते सो हो गया, ऐसा लोग कहते हैं। तो ये हो गया सारे श्रवण चक्षुरादि इंद्रिय व्यापार से उपरत हो जाते हैं, मन में एक हो गए उस समय ये सब इंद्रिय व्यापार समाप्त हो जाता है, तब विषय ग्रहण नहीं होता, सब कहते सो गया। आगे फिर द्वितीय प्रश्न है, ये तो सब इंद्रिय सो गए व्यापार से उपरत हो गए, कहानी अस्मिन जागृति, जागृति बहुवचन है, जागृति जागृत है, जागृति जागते रहते हैं, कौन अपने व्यापार करते हैं व्यापार से उपरत नहीं होते है, ये द्वितीय प्रश्न का उत्तर तृतीय मंत्र में। प्राणाग्नय तस्मिन् पुरे जागृति गार्हपत्यो हवाये स्वपानो व्यानवन्वहारे पचनो यद गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनाद आहवनीय प्राण। प्राणाग्नय एव एतस्मिन् पुरुषे जागृति, प्राण रूप अग्नि इसी पुरुष में जागते रहते हैं, प्राण रूप अग्नि, प्राण तो पांच प्राण, प्राण पान व्यान उदान समान, इनको अग्नि कहा गया, प्राण अग्नि के से अग्नि के समान होने के लिए कुछ सादृश्य होना चाहिए, अग्नि का सादृश्य कहते हैं गार्ह प्रत्यो हवा ऐसो अपान, अपान वायु गार्ह प्रत्य अग्नि, गार्ह प्रत्य अग्नि और एक होता है आहवनी अग्नि, एक होता है दक्षिणाग्नि, ये तीन अग्नि। तो प्राण हो गया, अपान हो गया, गार्ह प्रत्यय हवा ऐसो अपान। गार्ह प्रत्य अपान क्यों है आगे कहते हैं, यद गार्ह प्रत्याद प्रणीयते प्रणयनाद, ये इसका हेतु है। बीच में आ गया व्यानो अन्वाहार्य पचन, दक्षिणाग्नि को अन्वाहार्य पचन भी कहते हैं। एक आहवनी अग्नि, एक गार्ह प्रत्य अग्नि, एक अन्वाहार्य पचन, तीन होते हैं। गृह प्रति संबंधा से गार्ह प्रत्य अग्नि है, अग्निहोत्र करता है, गृह गार्ह प्रत्य अग्नि हमेशा प्रज्वलन करते है। जब कुछ कर्म करेंगे गार्ह प्रत्य अग्नि से ले करके आहवनी अग्नि, अग्नि कुंड स्थापन करके उसे हवन किया जाता है, उसका नाम है आहवनी अग्नि। और दक्षिणादि से में रहता है, दक्षिणादि संबंध से दक्षिणाग्नि कहते है, अन्वाहार्य पचन भी कहते हैं। तो यहाँ अपान को कहा गया गार्ह प्रत्य, अपान क्यों गार्ह प्रत्य हो गया, यद गार्ह प्रत्याद प्रणीयते, प्रणीयते अस्मातिति प्रणयन, जिससे अग्नि लिया जाते, अग्नि के लेते हैं, गार्ह प्रत्य अग्नि से ले करके आहवनी अग्नि, उसको उसमें अग्नि हवनादि क्या, अग्नि में हवन किया जाता है। तो गार्ह प्रत्य से लिया लेने से प्रणयात, प्रणीयते अस्मात, जिससे अग्नि लेते हैं उसको कहते प्रणयन। तो गार्ह प्रत्य अग्नि लेते हैं, इसी प्रकार यहाँ अपान, अपान है, नीचे वायु मुख से ग्रहण करते हैं, फिर उससे वायु बाहर निकालते हैं, जब ऐसे लेते हैं ये अपान का है, फिर जब निकालते हैं ऐसा बाहरते हैं, तो अपान से बाहर करते हैं, जैसे गार्ह प्रत्य अग्नि से आहवन अग्नि लेते हैं, इस प्रकार अपान वायु लेकर के फिर छोड़ते हैं, अपान से जैसे निकालते हैं। प्रणयनाथ यह गार्ह प्रत्य अग्नि हो गया अपान, और व्यान हो गया अनवाहार्य पचन दक्षिणाग्नि, और व्यान है दक्षिण दिक संबंध है, उसमें आगे दिया है हृदय के दक्षिण छिद्र के द्वारा निकलता है व्यान, हृदय के दक्षिण दिशा में छिद्र है, उसे निकलने से दक्षिण संबंध होने से व्यान को कहा गया दक्षिणाग्नि। दक्षिणाग्नि का दूसरा नाम है अन्वाहार्य पचन, और यद गार्ह प्रत्याद प्रणीयते प्रणयनाद, ये हेतु हो गया गार्ह प्रत्य अपान क्यों है, प्रणीयते अस्मात इति प्रणयन, प्रणयनाद गार्ह प्रत्य हो गया, गार्ह प्रत्य अग्नि से लाते हैं, क्या लाते हैं आहवनी अग्नि, इसलिए आहवन्य प्राण, आहवन्य अग्नि प्राण स्थानीय हुआ, जो बाहर छोड़ते हैं प्राण है, वो अपान को ग्रहण किया अंदर फिर छोड़ा, जो छोड़ते हैं अपान से प्राण निकालते हैं, इसलिए जिस प्रकार गार्ह प्रत्य से आहवन अग्नि निकाल कर हवन करते हैं, इसी प्रकार अपान से पान निकालने से ये हो गया आहवन्य प्राण, ये तीन अग्नि है, ये अन्य अग्नि है, ये तीनों का नाम लिया आगे कहेंगे। तो प्राणाग्नि जागते रहते हैं, इंद्रिय व्यापार नहीं करने पर भी प्राण अपान व्यापार होता रहता है, श्वास प्रश्वास चलता है। यदुच्छ्वास निश्वास वेतापाहुति समम नयति स समानो मनोहवाव यजमान इष्टफलमेवोदान शयनम यजमान महरहर ब्रह्म गमयति। तीन अग्नि कही गई, तीन प्रवायु, यदुच्छ्वास निश्वासो एतो आहुति, जिसे आहवन अग्नि में आहुति देते हैं। यहाँ उच्छ्वास निश्वास ऊर्ध्वश्वास ऊपर निकलना फिर ग्रहण करना, ये दोनों आहुति के समान हो गए, आहुति जैसे उच्छ्वास निश्वास ऊर्ध्वश्वास बाहर निकलना और ग्रहण करना, ये तो आहुति, आहुति तुल्य होगी, मुख आहवनी अग्नि उसमें उच्छ्वास निश्वास नासिका मुख से निर्गमन प्रवेश होता है, ये दोनों आहुति को समम नयति थे समानम, शरीर स्थिति के लिए समान रूप से समान वायु जाठा अग्नि का प्रज्वलन करके दोनों को समान रखता है, इसे समम नयति समान को प्राप्त करता है, इसे समान हो गया उच्छ्वास निश्वास समान हो गया। और कर्म करने वाले होता है यजमान जो आहुति देगा, तीन अग्नि करके आहुति देता है, यहाँ आहुति देने वाले यजमान हो गया मनो, मनो हवाव यजमान, स्वप्न अवस्था में मन स्वप्न रूप होकर के रहता है, तो इसे श्वास प्रश्वास चलता है, यजमान तुल्य हो गया मन, शरीर इंद्रिय व्यवहार करता है तो मन रहता है, और इष्ट फलमेव उदान, उदान वायु मरने के बाद स्वर्ग आदि को प्राप्त कराता है, यहाँ मन नाम के यजमान को स्वप्न समय में वो ले करके सुसुप्ति में पहुंचाता है। उदान उदान वायु इष्टफल में उदान उदान जैसे स्वर्ग आदि प्राप्त कराता है, इस प्रकार यहाँ मन को लेकर यजमान को स्वर्ग प्राप्त करता है। यजमान उदान वायु अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग आदि को प्राप्त कराता है मरने के बाद, यहाँ मन को प्राप्त कराता है उदान वायु इष्टफल ब्रह्म को प्राप्त कराता है स्वर्ग। इष्टफल में उदान इष्टफल यहाँ उदान हुआ उदान वायु उसको प्राप्त कराएगा मन को, कैसे उदान प्राप्त कराता है, स एनम यजमानम अहरहर ब्रह्म गमेति स का उदान वायु एनम यजमान इसी यजमान को यजमान है मन मन रूप यजमान को प्रतिदिन अहरह दो रोज रोज ब्रह्म गमयति सुश्रुति समय में ब्रह्म को प्राप्त कराता है। ब्रह्म आनंद रूप है स्वर्ग सुख रूप है, तो स्वर्ग रूप स्वर्ग जैसे ब्रह्म अक्षर ब्रह्म को लेकर के प्राप्त कराता है। सुश्रुति काल में अज्ञान आवरण केवल रहता है तो मन ब्रह्म के साथ एकदम समीप हो जाता है। अज्ञान आवरण अज्ञान में लीन हो गया, अज्ञान ब्रह्म की शक्ति आवरण है, मन अज्ञान में लीन हो जाने से ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, बीच में आवरण होता है तो वे अज्ञान में लीन होने से रोज ब्रह्म को प्राप्त करता है। जैसे जब सूत्रादि उपरत हो गया स्वप्न हुआ फिर सो जाता है, उसके बाद याग फल अनुभव के अनुसार जैसे होता है इसी प्रकार वहां इष्ट फल प्राप्त करके सुश्रुति अवस्था में ब्रह्म को प्राप्त करता है इसे कहा गया। अत्रैष देव स्वप्ने महिमानमनुभवति यद्दृष्टं दृष्टमनुपश्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुश्रुणोति दिशा दिगंतरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं चादृष्टं च श्रुतं चाश्रुतं चानुभूतं चाननुभूतं च सच्चासच्च सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति। तृतीय प्रश्न का उत्तर यहाँ है, ये कौन स्वप्न दिखता है। तृतीय प्रश्न कहा था कतर एष देव स्वप्नान पश्यति कार्य रूप कर्ण रूप ये सब है, ये स्वप्न कौन देखता है, ते अत्र एष देव स्वप्ने महिमान अनुभवति एष देव मन रूप देव स्वप्न में जो पर देव कहा था स्वप्न में महिमा का अनुभव करता है, मन स्वयं स्वप्न रूप हो जाता है। यद्यपि साक्षी के द्वारा मन स्वप्न ग्रहण होता है तो साक्षी होने के लिए मन है उपाधि उपलक्षण होता है, उपाधि मन से उपहित होने से मन को कहा वो स्वप्न महिमा विभूति को अनुभव करता है, अनुभव करता अर्थात स्वयं विषय विषय रूप हो जाता है, विषय भी हो जाता है विषय का ग्रहण। स्वप्नवत्ता में रूप रस घटपट आदि सब दिखते हैं और कोई देखता है, जो देखना दिखना सब कुछ है मन ही हो जाता है, सबको प्रकाश करता साक्षी। दृश्य दर्शन दृष्टा जिस प्रकार अभी दृश्य दर्शन दृष्टा त्रिपुटी प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीनों को प्रकाश करता है साक्षी। स्वप्नावस्था में मन ही स्वयं दृश्य रूप हो जाता है, वो एक रूप बनता है देखता है आचक्षुरादि इंद्रिय के द्वारा, वो भी कोई अतर नहीं है, वही मन ही इस रूप हो जाता है। वासना में एक रूप आपका बनता है, जैसे जागृत शरीर है स्वप्न में एक शरीर बनता है कल्पित शरीर वासनामय शरीर वो मन ही हो जाता है। जैसे मन दृश्य बन गया ऐसे मन एक शरीर भी बन जाता है, अनेक शरीर बन जाता है, एक शरीर में आपका अहंभाव हो जाता है और आगे जो शरीर के द्वारा चक्षुरादि इंद्रिय और दर्शन होता है ये सब मन ही हो जाता है, विषय और विषय रूप होकर के वही अनुभव करता है मन स्वप्न अवस्था में। और स्वप्न देखता है क्या देखता है, यह दृष्टम दृष्टम अनुपश्यति बार बार दिखा है जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में अनुपश्चार उसकी वासना से स्वप्न दिखता है। श्रुतम श्रुतम एवार्थम अनुश्रुणति सुना हुआ बार बार जो सुनता है ये स्वप्न में उसको श्रवण करता है। देश दिगंतरिश्च प्रत्यनुभूतम भिन्न भिन्न देश में भिन्न भिन्न दिशा में जो बार बार कुछ अनुभव करता है जो अनुभूत वस्तु है उसको पुनः पुनः प्रत्यनुभवती, कोई जरूरत नहीं आज जो देखा आज स्वप्न में देखेंगे, आज हो काल हो परसों हो कभी कुछ देखा था कभी कुछ अनुभव करता है स्वप्न में, और कभी कभी ऐसा दिखता है, कभी अभी नहीं दिखाता, ये भी सपने में दिखता है। दृष्टम च अदृष्टम च, दिखा गया नहीं दिखा गया, जो दिखा गया कभी देखा है उसको भी सपने में दिखता है, जो नहीं देखा, नहीं देखा का अर्थ इसी जन्म में नहीं दिखा, अत्यंत अदृष्ट का सपना नहीं होता है। दृष्टम च अदृष्टम च, दृष्ट इसी जन्म में दिखा गया, अदृष्ट का अर्थ इसी जन्म में अनुभूत नहीं है तो भी सपने में दिखता है। श्रुतम च अश्रुतम च का, इसी प्रकार इसी जन्म में श्रवण किया, जो कुछ इस जन्म में श्रवण नहीं किया अन्य जन्म में सुना होगा उसको भी सुनता है सपने में। अनुभूतम च अनुभूतम च, जो इसी जन्म में अनुभव किया है वह, और कुछ इस जन्म में अनुभव नहीं किया, किसी जन्म में अनुभव क्या होगा उसको भी सपने में दिखता है। इसे कभी कभी कुछ पदार्थ दिखता है जो यहां नहीं देखा है, ऐसे कभी दिखता है, किन्तु इसके ऊपर स्पष्टीकरण हुआ है जो इसी जन्म में नहीं दिखा गया, अत्यंत अदृष्ट अत्यंत अश्रुत अत्यंत अनुभूत का दर्शन नहीं होता है। अन्य किसी जन्म में अनादिकाल से करोड़ों करोड़ों जन्म, बहुत जन्म हो गए सौ योनि में, कुछ अनुभव तो संस्कार उद्भूत होता है तो सपने में दिखता है, और जो जो दिखता है उस समय सत्य ही लगता है, ऐसे अनुभव करता है, बार बार सपने में दिखता है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कुछ मिला हुआ कोई देखा है और कुछ देखा है मिल कर कुछ देख लेता है, जो कभी नहीं देखा गया, मनुष्य चल रहा है, मनुष्य के ऊपर कोई तालाब लेकर दौड़ रहा है, ऐसा कभी देखा है? नहीं देखा, किन्तु मनुष्य देखा है, कोई दौड़ता है देखा है, तालाबी देखा है, तो कभी देखा मनुष्य उसके ऊपर वो रखा है, उसके ऊपर तालाब लोग स्नान करते हैं, ये भी दिख जाता है, मिल करके भी हो जाता है। पेड़ देखा है, समुद्र देखा है, पेड़ के ऊपर लोग चढ़ते चढ़कर ऊपर समुद्र में स्नान करते, ये भी दिख जाता है, तो मिलकर भी हो जाता है। और जो कुछ नहीं देखा कभी, अदृष्ट अन्य जन्म में दिखा गया, ये सब सपने में दिखता है। सच असच, सत है उस समय सत्य वस्तु देखता है, स्थूल वस्तु, असत जो सूक्ष्म वस्तु ही देखता है, भ्रांति से कभी कुछ भ्रांति हो जाती है, इसे ही देखता है। सच असच सब देखता है, कुछ पदार्थ जागृत अवस्था में कोई पदार्थ देखता है और कोई पदार्थ रज्जु सर्प आदि देखता है, इसी प्रकार वो स्वप्न में देखता है विभिन्न प्रकार। सर्वम पश्यति, सब कुछ स्वप्न में देखता है, जितने जितने पदार्थ हैं कुछ नहीं, ये नहीं देखता है ऐसा नहीं कह सकते, बहुत पदार्थ देखता है, जो कुछ देखता है सर्व पश्यति, स्वयं सर्व हो जाता है,